अथय सीताया पतये नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बल धामं हेम शैलाभुदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि।
राम जी महाराज ने भरत जी पर छोड़ दिया कि तुम कहो वैसा ही करेंगे। ऐसा क्यों किया? ऐसा आपको हमको बताने के लिए किया कि परस्पर में घर गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए, कि अपने मन की बात हटा करके और व्यवहार करना चाहिए। आज घर गृहस्थ के व्यवहार बिगड़े हुए हैं, वो एक ही बात कह, मेरे मन की होनी चाहिए। मेरे मन की बात पूरी होनी चाहिए, इससे बिगाड़ होता है। सेठ जी से किसी ने कहा कि सेठ जी, हम तो हमारे मन की नहीं करना चाहें और दूसरा अपने मन की बात रखे, तो क्या करेंगे? उसके मन की करो कि उसके मन की बात करने लायक नहीं हो तो क्या हाथ जोड़ दो, नम्रता से कह दो कि साहब मेरे से होता नहीं है। फिर भी वो अपने मन की लगाए तो कि देखना चाहिए हमारा ही कसूर है, कहीं हमारे ही मन में है, अपने मन की कराने की आ रही है, तभी तो इसके मन में है। सेठ जी ने यही उदाहरण दिया इसी प्रसंग का कि भरत जी अपने मन की कराने के लिए गए थे कि राम जी को हम अयोध्या लाएंगे। सारा सामान लेकर गए, राजतिलक का सारा सामान, जाकर के कहा कि आप चलो। तो मौका ही नहीं आया, भगवान ने कहा तू कहे वैसा करेंगे, तो भरत जी ने कह दिया महाराज आप कहोगे वैसा मैं करूंगा। भरत जी के मन में भगवान को लाने का संकल्प था, लेकिन भगवान ने अपना संकल्प जो ही खत्म किया तो भरत जी ने भी संकल्प खत्म कर दिया। एक कायदा होता है, हम जितने अच्छे होते चले जाएंगे भीतर से, उतने हमारी अच्छाई का प्रभाव उस पर पड़ेगा। यदि वो अच्छा नहीं हुआ तो कि अपनी कमजोरी समझ के अपना ही व्यवहार सुधारो। सेठ जी की ये बात बहुत कीमती है कि सत्संग सुनने का नाम सत्संग नहीं है, व्यवहार सुधारने का नाम सत्संग है। व्यवहार सुधारे, ऐसा बर्ताव करना चाहिए कि जिसमें हमारे अंदर स्वार्थ न हो और हमारे अंदर अहंकार न हो। स्वार्थ रहित और अहंकार रहित बर्ताव होना चाहिए। बड़ा अच्छा ये प्रसंग बताया। और जब भरत जी ने ये कह दिया कि महाराज हम तो आप पर डाल दिए, आप जानो और आपका काम जाने, तो तत्काल जनक जी के दूत आए और ये प्रसंग ही बदल गया। इतनी गंभीर ये मीटिंग हुई थी, इसको गोस्वामी जी महाराज ने प्रेम के अंदर डुबो दिया। जैसे खूब जोर से बरसात आए तो कहने लगे क्या बताया जी, नापासर सिंथल के बीच की सड़क एकदम डूब गई, पता ही नहीं चला। सुनकर के लोग राजी होते हैं। और ऐसे कोई कहे साहब क्या बताए, सड़क टूट गई, सड़क का पता ही नहीं, ऐसे समझ दो तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन खूब बरसात हो, खूब बरसात हो, और नापास और सिंथल की सड़क एकदम डूब जाए, पता ही नहीं चले, तो हंसते हंसते बोलते क्या है ऐसी जोर से, इतनी जोर से बरसात आ गई, नापास और सिंथल का मार का ही पता नहीं चला गाड़ी किधर जाए अब। अच्छा इतनी जोर से बरसात, इतनी जोर से बरसात हुई। ऐसे ही यहाँ इतना प्रेम उमड़ा राम जी के और भरत जी के, एक एक का संकल्प का त्याग हुआ, इतना प्रेम उमड़ा कि उस प्रेम में आगे की कथा ही डूब गई, सब डूब गई। और एकदम कथा मुड़ गई कि वो जनक जी के दूत आ गए, पूरी घटना सुनाई और कहा कि जनक जी महाराज प्रयागराज से प्रस्थान कर चुके हैं चित्रकूट के लिए, और चित्रकूट तक आ भी गए हैं। राम जी महाराज ने कहा चलो भाई अब गुरु जी आगे, आगे चलो, ससुर जी आगे चलो, आगे गमन कीन रघुनाथा। सबके सब गए और जिस मार्ग से उनको आश्रम में जाना था भगवान वहां से उतर करके पहले चित्रकूट पर आ गए। इतने में ही जनक जी महाराज भी वहां पहुंच गए, अपने रथ का त्याग किया। राम जी के दर्शनों से पहले ही उन्होंने चित्रकूट को प्रणाम किया, हे चित्रकूट पर्वत, तूने कितने कितने ऋषि मुनियों के साथ राम और भरत जैसे पवित्र प्रेम का उदाहरण रखने वालों को धारण किया है, हम तुमको बारंबार प्रणाम करते हैं। करी प्रणाम रथ त्याग तब ही। जनक जी महाराज के मन में भगवान श्री राम के दर्शनों की लालसा बढ़ती चली गई। अब इतने आराम में रहने वाले महाराज दशरथ पैदल पैदल चल रहे हैं, तो भाई श्वास उपड़ना चाहिए और जगह जगह विश्राम लेना चाहिए, पर नहीं, पथ श्रम ले सकले सुन का हो, उनको आनंद आ रहा था। अब अगला कदम राम जी के लिए बढ़ रहा है, ये अगला कदम राम जी के लिए, राम जी के दर्शन होंगे, राम जी के दर्शन होंगे, इस भावना से वे कोई क्लेश को प्राप्त नहीं हुए। बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही, देखो जब ये मन भगवान राम और सीता में लग गया तो संसार के सुख दुख की कौन परवाह करेगा। बहुत बढ़िया बात कही है ये, मन तय जय रघुवर बेदे ही, और बिनु मन तन सुख दुख सुधि के ही। ये सुख दुख में जब हमारा मन जाता है ना, तभी हम सुखी दुखी होते हैं। देखो कोई भयंकर बीमार आदमी है, सारे शरीर में पीड़ा हो रही है, एडी से के लेकर चोटी तक सारे शरीर में बड़ी भयंकर पीड़ा हो रही है, लेकिन गहरी नींद आ गई, उस समय पीड़ा का अनुभव होता है क्या कि नहीं होता? क्यों नहीं होता? कि उस समय मन है वो पीड़ा में नहीं है, मन है वो निद्रा में लीन हो गया। जब ये मन से निद्रा हटेगी और मन इसको कैच करेगा सुख दुख को, तो फिर सुख दुख होगा। तो मन तह जय रघुवर वैदेही, बहुत अच्छा ये साधन संबंधी बात कही तुलसीदास जी ने, कि जब मन राम जी में रहेगा और संसार में मन रहेगा ही नहीं, तो संसार का सुख दुख उसको मिलेगा ही कैसे, ऐसी बात हुई। जनक जी महाराज चले जा रहे इधर, और उनके साथ में चलने वाला समाज है, वो समाज भी खूब यूं उलट पड़ा, ये मिथिला से आने वाला समाज। इतने में ही राम जी को देखा, वशिष्ठ जी महाराज को देखा, बड़े बड़े पुरुषों को देखा, तो जनक जी महाराज ने वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया, और जनक जी के साथ में आने वाले जितने ऋषि मुनि थे उनके चरणों में राम जी महाराज ने प्रणाम किया, और राम जी महाराज ने ससुर जी को प्रणाम किया, सब भाइयों ने ससुर जी को प्रणाम किया, और वे सब अपने आश्रम में ले आए। अब यहाँ दोनों अयोध्या वासियों का और मिथिला वासियों का बड़ा परस्पर में प्रेम का मिलन हो रहा है। गोस्वामी जी महाराज यहाँ एक बड़ी विचित्र उपमा की बात बोलते हैं। आश्रम सागर शांतरस पूरन पावन पाथ से नमनौ करुणा सरिता लिए जाय रघुनाथ।
भगवान का जो आश्रम है वो एक आश्रम क्या है, सागर है। सागर तो सागर में तो पानी चाहिए, पानी क्या है कि यहाँ जो शांति है वही पानी है। आश्रम सागर शांत रस, शांत रस से ये आश्रम परिपूर्ण है। अब सागर में तो कोई नदी जाकर मिलती है तो नदी कहां से लाए कि सेन मनहु करुणा सरिता। जनक जी महाराज जो सेना लेकर आए ना, यूं लंबी लंबी सेना चल रही, ऐसा लगता है कि एक करुणा की नदी आकर के सागर में मिल रही है। अर्थात जनक जी महाराज और मिथिलावासी सब रोते बिलखते चित्रकूट में भगवान के आश्रम पर पहुंचे हैं। चित्रकूट का प्रसंग चल रहा है भाई, टिकट बना लेना। हमने सुना टिकट मिलना कम हो गया, क्योंकि लोग पास आई जना बढ़ा हुआ, पास में तो थोड़ा टाइम लग जाए, तो पहले टिकट बना लो। 90 दिन पहले बढ़े हैं जाने का टिकट, अब आरसू बढ़न लग गया। बटे कोई कहता हो कि धड़ाधड़ टिकट बन गया। आज ने चित्रकूट का जितना विस्तार से लीला का वर्णन कहीं नहीं किया। कहते बोरति ज्ञान विराग की करारे। अब देखो जब नदी चलती है तब जोर से वेग से चलती है तो किनारे डूब जाया करते हैं। तो यहाँ किनारा क्या है, ज्ञान और बैराग। वो करुणा की ऐसी नदी चली कि ज्ञान और बैराग के किनारे डूब गए। बोरती, बोरती माने डूबना, डूब गए। ज्ञान बैराग किसी में रहा ही नहीं, साहब रो रहे हैं। और बताते हैं कि भाई समुद्र में नदी में तो लहरें चलती है। ये लहरें क्या है कि लोग यूं राम जी ने अयोध्या छोड़ दी जंगल में, ऐसे जो शोक करके आहे भरते हैं, ये मानो शोक की लहरें, ये तरंगे हैं। वचन ससोक मिलत नद नारे, सोच उसास समीर तरंगा। और उस तरंग से जब वायु चलती है तो क्या होता है, वृक्ष गिर जाते हैं नदी के किनारे के, वृक्ष गिर जाते हैं, खूब झूमते हुए वृक्ष गिर जाते हैं। तो यहाँ वृक्ष का है, ये धैर्य रूपी जो वृक्ष है सबका टूट गया। और नदी के अंदर जो वेग की धारा है वो क्या है कि विषम विषाद, अंदर का जो दुख है, भयंकर दुख है, यही इस नदी का तेज प्रवाह है। और भय और भ्रमर, ये इसमें ये भय भ्रम भंवर अबर्त अपारा चक्र है, ये पानी में घुमावा है चक्र। भय लग रहा है सबको, भय किस बात का भाई, भय लग, अब क्या होगा, राम जी जंगल में अब क्या होगा, ये भय पैदा हो गया। और भ्रम हो गया सबको, भ्रम भ्रम ये हुआ कि ये कैसे हो गया, ये एकाएक कैसे हुआ, ये क्या, किसने कुछ किया, क्या किसकी तरफ से हुआ, ऐसे भ्रम संशय भय ये उसमें पानी के घुमाव है। तो भाई कोई अच्छे अच्छे नाविक को बुलावे कि यहाँ तो बड़े अच्छे अच्छे नाविक हैं, केवट बुद्ध, बड़े बुद्धिमान लोग केवट बने हुए हैं और विद्या की नाव लेकर आए हैं, पर वे भी यहां पर खे नहीं सकते हैं, क्यों, विद्या को भूल जाते हैं। तो भाई नाव में बैठेंगे कौन, बैठेंगे बिचारे चित्रकूट में रहने वाले कोल किरात आदि, वो बिचारे खड़े रह गए, वो देखे कैसे यात्रा करें। अर्थात राम जी का भी प्रेम, मिथिलावासियों का प्रेम, अयोध्या वासियों का, इनका प्रेम ने ठगे रह गए, किसमें प्रेम ज्यादा और किसमें कम, क्या बताए भाई। जैसे अपने लोग कहीं बाजार में चले जाए, सब दुकानें बड़ी अच्छी सजी हुई एक जैसा माल बिके तो अपन देख करके क्या निर्णय कर सकते हैं भाई ये दुकानदार ज्यादा मालदार है ये कम है ये ज्यादा है ये कम है कैसे कह सकते हैं। एक जैसी दुकान एक ही बाजार एक ही सामान ऐसे ऐसे किसमें कम प्रेम है किसमें ज्यादा है कुछ कह नहीं सके। थकी विलोक पथिक ही हारे इनका तो हृदय में बड़ा बड़े हार मान ली कह सके। शोक विकल दौ राज समाजा रहान ज्ञानन धीरज लाजा किसी प्रकार से किसी के मन में कोई लाज संकोच की ज्ञान कुछ नहीं रहा और जनक जी महाराज तो खूब रोने लग गए फूट फूट के रोने लग गए। जनक जी को रोता देख करके सब रोने लग गए। अवगाही शोक समुद्र सोचई नारी नर व्याकुल महा सब नारी और नर रोने लग गए। सबके सब विधाता को दोष दे लगे हे विधाता ये बेचारा हंसता खेलता फलता फूलता परिवार था इसमें कहां तुमने ये रोना ही रोना पैदा कर दिया। बड़े बड़े योगी लोगों ने तपस्वियों ने सिद्धियों ने सिद्धों ने देखा अरे जनक राज विदेह इनके विषय में हम सुनते थे कि इनके कोई असर नहीं पड़ता कोई असर विदेह है ये इनके कोई असर नहीं पड़ता कैसे भी है लेकिन ये तो रोते हैं। वशिष्ठ जी महाराज ने जनक जी महाराज से कहा हे महाराज धीरज रखिए धीरज आप थोड़ा धैर्य धारण कीजिए। तपस्वियों की तपस्या हिल गई योगियों का योग संदेह में पड़ गया कि अरे विदेह को कैसे शोक हो रहा है। हम तो सोचते हैं कि ज्ञानी को तो कभी शोक होता ही नहीं आप तो भगवान के प्रेम में रो रहे हैं कोई संसार की मोह ममता में थोड़े ही रो रहे हैं पर लोग समझ नहीं पा रहे महाराज कि ये अमित उपदेश जहते लोगन मुनि बरन धीरज धरि अनारेस कहे कहे वशिष्ठ विदेह सन। बेचारे वो क्या करें बार बार रोते हैं आंसुओं को पूछते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिनका ज्ञान सूर्य के समान सबके हृदय में रहने वाले अंधकार को दूर करने वाला है ऐसे जनक जी महाराज की दशा है तो ये कोई मोह ममता की दशा नहीं है। तेह की मोह ममता नियराई इनके पास कोई मोह ममता आ सकती है क्या नहीं नहीं यह सी राम स्नेह बढ़ाई ये तो राम जी के प्रेम की बढ़ाई है। अब देखो तुलसीदास जी बड़ी विचित्र बात कहते हैं संसार में तीन प्रकार के आदमी हैं एक तो विषयी आदमी है एक साधक है और एक सिद्ध है। अपने रामचरितमानस में तीन प्रकार के भगवान के भक्त मिलेंगे विषयी भक्त है सुग्रीव स्वार्थी कितना कह दो उसको कितना राम जी के सामने गिड़गिड़ाया राज मिल गया सब भूल भाल गया विषयी भक्त और साधक भक्त और सिद्ध भक्त। साधक भक्त है विभीषण और सिद्ध भक्त है हमारे निषाद राज। भरत जी वगैरह तो भगवान के ही अंग हैं भगवान के ही स्वरूप हैं इसलिए उनकी बात नहीं है। जहां पात्र कौन कौन मिले भगवान को तो एक तो मिला उनको निषाद राज वो है सिद्ध भक्त फिर मिला सुग्रीव वो है विषयी भक्त और फिर मिला विभीषण वो था साधक भक्त। तो ये तीन प्रकार के प्राणी होते हैं विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने। परंतु इन तीनों में आदर किसका ज्यादा होता है लोग कहते हैं भाई विषयी का क्या आदर करना है सिद्ध सबसे बड़ा है विषयी से बड़ा साधक साधक से बड़ा सिद्ध। तुलसीदास जी कहते ना 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 न तो सिद्ध बड़ा है न ये विषयी छोटा है। तो महाराज साधु सभा बड़ आदर तासु साधु सभा में तो उसका आदर है कि जिसका हृदय भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है। देखो सुग्रीव विषयी भक्त है, मारने के लिए गए लक्ष्मण जी मारा तो भगवान ने भाई मारना नहीं उसको, तात सखा सुग्रीव हमारा मित्र है, वो मित्र कहकर के कहा भगवान, मारना नहीं उसको, हमारा वो मित्र है। भरत जी ने कहा सुग्रीव से कि सुग्रीव त्वम अस्माकम पंचमो भ्राता, तुम हमारे पांचवें भाई हो, चार भाई तो है, तुम हमारे पांचवें भाई हो। सुग्रीव से कहा भरत जी ने, तो जो विषयी जिसको हम मानते हैं लेकिन उसके अंदर किसी भी प्रकार से भगवान का प्रेम उदित हो गया तो सबसे बड़ा है, सिद्ध से भी बड़ा है। खूब अच्छे ढंग से जनक जी महाराज को समझाया और सब लोग वहां आराम से बैठे। पशु खग मृगन न की न आहारू, जनक जी महाराज का इतना विषाद बढ़ा हुआ था, किसी ने भोजन नहीं किया उसे, किसी ने जल भी नहीं लिया। रात बीत गई, दूसरे दिन स्नान वगैरह किया, सबके चेहरे उतरे हुए, अयोध्या वासियों के और मिथिला वासियों के। हंस वंश गुरु जनक पुरोधा, एक तरफ तो जनक जी के ब्राह्मण लोग, एक तरफ सूर्यवंशी ब्राह्मण लोग, सूर्यवंश के पुरोधा ब्राह्मण लोग वशिष्ठ वगैरह, इधर शतानंद वगैरह, जिन्होंने बहुत बड़ा परमार्थ का मार्ग सोधा है, वे भी आज इस अवस्था को, प्रेम अवस्था को देख करके चकित हो गए। अरे भगवान में ऐसा प्रेम कभी देखने को ही नहीं मिला। सज्जनों वहां पर विश्वामित्र जी भी आए थे, विश्वामित्र जी ने सबको वहां पर बैठा करके कौशिक कई कई कथा पुरानी सब कथाओं को कहा और सबको समझाया। तब राम जी महाराज ने विश्वामित्र जी से कहा, हे विश्वामित्र जी, हे गुरुदेव, ये लोग कल से भोजन नहीं किए हैं, जल भी नहीं लिए हैं, आप आज्ञा दीजिए इनको। विश्वामित्र जी ने कहा, ओहो देखो राम जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, अब कल से आपने कुछ नहीं लिया है और अभी भी गयो बीत दिन पहर अढ़ाई, ढाई पहर बीत गया है, जाओ आप सब लोग भोजन करो। अब यहां एक विचित्र लीला होती है, क्या लीला होती है, जनक जी महाराज कहते हैं यहां अन्न वगैरह कैसे खाएं भाई, क्यों बेटियां दी हुई है हमारी, हमारी बेटियां दी हुई है, इनके यहां भोजन कैसे करें बताओ। कहा भूप बल सबई सुहाना, यहां उचित नहीं असन अनाजू, अनाज का भोजन तो यहां हम कर नहीं सकते हैं। तब इधर क्या हुआ कि जितने बंचर कोल किरात थे, देखो इतनी अयोध्या की सेना, इतनी जो है ये इनकी सेना जनक जी महाराज की, क्या करें, तो वो फल फूल लेने गए तो वृक्षों में इतने फल लग गए अपने आप ही। अब ये किसने लगाए, राम जी ने लगाए कि सीता जी की कृपा से हुआ, कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये राम जी की कृपा से हुआ। देखो सीता जी ने सिद्धियां बुलाई थी विवाह के समय में, सुमेरी सी सुमेरी सिद्धि, मतलब सीता जी ने सिद्धियों का स्मरण किया था जब राम जी की बारात आई ना तब। और यहां अब राम जी महाराज ने ये वृक्षों पर खूब फल लगा दिए, तई अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार ले आए, बन चर विपुल धर धरी कांवरी भार, खूब भार ले लेकर के आए। और जितने वहां पर तालाब थे, नदियां थी, सब जो है पानी से भर गई और भूमि है वो बड़ी सुंदर मालूम देने लगी, पक्षियों की आवाज बड़ी मीठी लगती है, सब उन पक्षियों की आवाज सुनते हैं, कहीं मोर की आवाज तो कहीं तोते की आवाज तो कहीं और पक्षियों की आवाज। बोलत खग मृग अली अनुकूला, तेई अवसर बन अधिक उछाऊ, जो सूखे सूखे ठूंठ के पेड़ थे एकदम हरे भरे हो गए। वो एकदम ये सुंदरता कैसे आई कुछ पता नहीं चला। और कोई किस वृक्ष के नीचे, कोई किस वृक्ष के नीचे जा जा करके सब ने पड़ाव डाल दिया। दल फल मूल कंद विधि नाना और पावन सुंदर सुधा समाना। इस प्रकार से चार दिन बीत गए। उनको सब लोगों के मन में आ रहा है, अब लोगों के मन में क्या आ रहा है कि देखो बहुत अच्छा काम हो गया, अब जो है यहां अपन बैठे हैं। सीताराम संग बनवासु कोटि अमरपुर सरी। सीताराम जी जहां रहते हैं वहां हम करोड़ों करोड़ों अमरावती में रहने से भी ज्यादा लाभ है। किसी ने कहा कि अरे भाई घर चलोगे, अरे तुम्हारा कोई भाग्य खराब है, विधाता उल्टे हो गए, घर का नाम लेते हो। जय गर्भ भाव बाम विदिते ही, कितनी सुंदर मंदाकिनी बहती है, कैसे बढ़िया राम जी के दर्शन होते हैं, कितना अच्छा यहाँ वन की सुवंध सुवासित वायु है और कंदमूल फल कितने मीठे हैं। यहाँ तो हमको पूरा 14 वर्ष रखे तो हम तो रहने के लिए तैयार है। सुख समेत सम्मत दूसाता, दूसाता माने 7 × 14, 14 वर्ष रखो हम तैयार है। इससे बड़ा और सुख और आराम अपने को कहाँ मिल सकता है। ऐसे ऐसी लोगों की बातें हो रही थी। इधर सीता जी की माँ है, उसने अपनी दासी से कहा कि जाओ कौशल्या जी क्या कर रही हैं मालूम करके आओ। तो कौशल्या जी को देखा, कभी बात कर सकती हैं, समय है उनके पास, तो बड़े अदब कायदे से गई और कौशल्या जी के पास में गई। बड़े प्रेम से कौशल्या जी को प्रणाम किया, बड़े कौशल्या जी ने आदर से उनको सम्मान दिया। और सम्मान देने के बाद फिर सीता जी की माँ कहने लगी, सुनैना जी कहने लगी। अब देखो सीता जी की माँ है ना, ये है प्रेम की मूर्ति और कौशल्या जी है ज्ञान की मूर्ति। दशरथ जी महाराज है प्रेम की मूर्ति, जनक जी है ज्ञान की मूर्ति और कौशल्या जी है वो है ज्ञान की मूर्ति, सुनैना जी है प्रेम की मूर्ति। सीता जी की माता ने कहा कि देखो कौशल्या जी, इस विधाता की बुद्धि कैसी खराब हो गई, उसने दूध का जो झाग होता है उस झाग को एक लोह की टांकी से फोड़ना चालू किया। अरे दूध के झाग को लोह की टांकी से फोड़ते हो, लोह की टांकी से तो फोड़ो तो कोई दीवार फोड़ो, मजबूत चीज को फोड़ो, ये दूध है। राम जी जैसे को वनवास मिला, कितना कोमल शरीर इनका, कुछ विधाता की करतूत समझ में नहीं आती है। देखो कौशल्या जी जहां कहीं जाते हैं सुनते तो है कि अमृत है अमृत है, वहां अमृत है वहां अमृत है, अमृत की बातें केवल सुनने को मिलती है लेकिन जगह जगह जहर है। वनस्पतियों में जहर देख लो, अनाज में जहर देख लो, पशु पक्षियों में जहर देख लो। और सज्जनों आयुर्वेद शास्त्र में तो आया है कि मनुष्य के शरीर में बड़ा सबसे ज्यादा जहर होता है, बहुत ज्यादा जहर होता है, सांप से भी ज्यादा जहर होता है। जो मनुष्य नमक मिर्च बिल्कुल नहीं खाए ऐसे आदमी को यदि सांप बिच्छू डस ले तो सांप बिच्छू मर जाए। अस्तु तो कह रहे देखो अमृत की तो बातें सुनने को मिलती हैं लेकिन जहर तो जहां तहां सर्वत्र मिलता है। और हंस ऐसे होते हैं, हंस मोती खाते हैं, केवल कहने सुनने की सी बात है। कौवे खूब उड़ते हैं, कौवे उल्लू बगुल ये तो खूब उड़ते रहते हैं, मान सरोवर के हंस केवल सुनने सुनने को मिलते हैं। अर्थात हम क्या क्या सुन रहे थे अयोध्या में, महाराज दशरथ जी जैसे महाराज हैं, राम जी जैसे पुत्र हैं, कितना आनंद था हमारे सुनने में, सब ये आनंद तो हमारा बिखर गया। सुमित्रा माता बोलती है, सुमित्रा ने कहा कि देखो सुनैना जी, विधाता की गति बड़ी विपरीत बड़ी विचित्र होती है, उसको कौन मना करे। देखो कितने प्रयत्न से ये संसार को बनाता है, कितने कितने प्राणियों को पालता है ये विधाता, और एक एक क्षण में सबका नाश कर देता है। अरे नाश ही करना था तो पालता क्यों है, बनाता ही क्यों है। जो श्रीजी पालई हरई बहोरी, या तो बनाना नहीं चाहिए और बना दिया तो फिर नष्ट नहीं करना चाहिए, पर ये मानता ही नहीं है तो बच्चे के समान काम करता रहता है। कौशल्या जी ने कहा, सुमित्रे क्यों किसी को दोष देती हो, सब कर्म की प्रधानता से सुख दुख के क्षण आया करते हैं। विधाता की गति है वो कर्म के अनुसार चलती है, क्यों विधाता को दोष दे। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, उसको वैसे ही धारण करना पड़ता है। इस राजाय सी सभी के, उस विधाता की आज्ञा को तो सभी अपने सिर पर धारण करेंगे। उसका प्रभाव देखो कैसा संसार बनाता है, कैसा वो पालता है। उसी ने अमृत बनाया, उसी ने जहर बनाया, उसका विधान अचल होता है सुमित्रे। इसलिए विधाता के ऊपर कोई दोष मत दीजिए। अपने तो अपने यहां विचार कीजिए कि अपने परिवार में क्या हुआ कि जीवन तो हमारे महाराज का सफल हो गया, दशरथ जी महाराज का। भूपति जीव मरब उर आनी, सोचिए सखी लकी निज हित हानि। और अपने भी जो बार बार रोते हैं दशरथ जी को लेकर के, अपने पति को लेकर रोते हैं, ये भी भाई स्वार्थ के लिए रो रहे हैं, कोई अपने को रोने की जरूरत ही नहीं थी। सीता जी की मां ने फिर कहा, बरानी तुम्हारी बात तो बड़ी सत्य है, आपके महाराज अयोध्या के महाराज बड़े पुण्यवान थे, तो इनको आप जैसी रानी मिली, बड़े पुण्यवान महाराज थे। कौशल्या जी ने कहा, देखो सुनैना जी, आज आप मेरे से मिलने के लिए आई हो, मुझे आप ये कहने के लिए आई हो क्या कि राम जी को वनवास मिल गया। राम के वनवास की मुझे कोई चिंता नहीं है, लक्ष्मण जी जाए वनवास में, सीता जाए वनवास में, मुझे ऐसा लगता है, बार बार मन में आता है कि इसका परिणाम बड़ा अच्छा होगा, इसके लिए मेरी चिंता ही नहीं है। ये लोग आए इनके साथ मैं भी आ गई, मेरे मन में है कि राम का वन में जाना बहुत उचित है, लोगों के लिए लाभ की बात है, पर मुझे तो भरत की चिंता हो रही है, रात दिन मुझे तो भरत की चिंता हो रही है, मुझे और कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। देखो भगवान की कैसी मेरे पर कृपा है और तुम्हारा मेरे पर आशीर्वाद है, कैसे अच्छे मुझे चार बेटा मिले और बहुएं मिली तो देव सरी बारी, गंगा जल जैसी मुझे पवित्र बहुएं मिली है। कौशल्या जी कहती है, आज तक मैंने राम की सौगंध नहीं खाई है, राम शपथ मैं आज राम की सौगंध खा के कहती हूं। ये राम जी की सौगंध नहीं तो सारा काम भी उल्ट पुलट किया। दशरथ जी भी राम जी की सौगंध नहीं खाते, मंथरा यदि केकई को राम जी की सौगंध तक प्रतीक्षा न करवाती तो ये रामायण कुछ और ही होती। इसलिए राम जी की सौगंध दशरथ जी ने खाई है ना, वो खाई वो तो बेसमझी से या कोई ईश्वर की इच्छा से खाई होगी, मैं मेरे विवेक से सौगंध खा के बोलती हूँ, राम शपथ मैं कीन न काऊ, आज तक मैंने राम जी की सौगंध नहीं खाई, सोकर ही कहूं आज वो शपथ खा करके मैं बोलती हूँ, हे मेरी सखी मैं तुमको सत्य बात कहती हूँ कि भरत जैसा शीलवान गुणवान विनयशील और मान के योग्य और जिसमें भाईपा और भाई के प्रति भक्ति भरोसा भलाई ये इसके समान किसी में भी नहीं है, हम क्या भरत की बड़ाई करेंगे। सुनैना जी जैसे सीपी है, सीपी इतनी सी सीपी, वो सागर को खाली कर सकती है क्या? क्या हमारी बुद्धि भरत तक पहुंच सकती है क्या? महाराज दशरथ जी बराबर मुझे बोलते रहते थे कि कौशल्य, भरत अपने कुल का एक बहुत बड़ा दीपक होगा। देखा, आदमी की परीक्षा समय पर ही होती है। ये तो भरत था जो आज हम सबको चित्रकूट में लेकर आया। भरत की यदि बुद्धि काम नहीं करती तो आज हम सब चित्रकूट में थोड़े ही मिलते हैं। कैसा विचित्र काम किया भरत ने। आज तक भरत ने कभी किसी प्रकार से भगवान के प्रेम को प्रकट नहीं किया। इसीलिए तो सोने को जितना तपाया जाता है तो सोने का गुण दिखाई देता है। हीरे को जितना कसौटी से रगड़ा जाता है उतना ही उसकी चमक, छिपी हुई चमक प्रकट होती है। ऐसे आज भरत जी की भरत जी का भाईपना, भक्ति, भरोसा सब प्रकट हो गया। क्या बताऊं, अनुचित आज कहब असमोरा, शोक स्नेह सयानप थोरा। मेरे अंदर इतना शोक हो गया कि मेरे अंदर से सयानापना गायब हो गया। मैं इस समय विचार करके नहीं बोल रही हूं, क्योंकि मेरी बुद्धि तो एकदम भरत के प्रेम में डूब चुकी है। इसलिए हे सुनैना जी, आपसे मैं एक प्रार्थना करती हूं, ऐसे समय में हमारे लिए या तो मिथिलेश सहाय है, जनक जी महाराज सहाय है, उनको जाकर के आप ऐसी कोई बात बताना कि वे ऐसा उपाय करें कि भरत है वो वन में चला जाए, लक्ष्मण जी अयोध्या चले आए। देखो किसी ने नहीं सोचा है, ये कौशल्या माता सोच रही है। राख ही रखिए लखनऊ भरत गवा नहीं बन, जो ये मत माने महीप मन, तो भल जतन करब सुविचारी। ठीक तरह से विचार कर लेना, क्योंकि भरत के मन में राम के प्रति गूढ़ प्रेम है। सज्जनों, यदि कौशल्या जी के कहे कहे अनुसार भरत जी को राम जी के साथ भेज दिया होता ना, तो भरत जी तो कभी मर जाते। सीता जी का जब हरण हुआ उस शरण सुनी मर जाते भरत जी महाराज। भरत जी और राम जी का इतना सा भी कष्ट शरीर लक्ष्मण जी सह सकते हैं। क्यों? लक्ष्मण जी शेषावतार हैं। लक्ष्मण जी शेषावतार हैं और भरत जी है ये शंखावतार है, और ये शत्रुघ्न जी है ये चक्रावतार है। भगवान के शंख चक्र ये भरत और शत्रुघ्न है, और ये शेषनाग है ये लक्ष्मण जी है, और स्वयं विष्णु भगवान है, और सीता जी लक्ष्मी जी है। तो शेषनाग है ना, उसके हजारों फण होते हैं, तो उसमें भगवान को अपना आश्रय दिए हुए है, तो वे भगवान की रक्षा के लिए भगवान को कुछ भी कह सकते हैं। लक्ष्मण जी खूब डांटते हैं कई बार राम जी, लेकिन भरत जी ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। भरत जी है वो जो है सुदर्शन चक्र है भगवान के साथ, भगवान की आज्ञा में रहते हैं। जब कौशल्या जी ये बात बोलने लगी तब आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। सब कहने लगे वहां पर बैठे हुए सिद्ध जोगी मुनिजन कि वाह वाह वाह, कितनी बढ़िया बात कही है, कितनी बढ़िया बात कही। सुमित्रा जी ने कहा, माता कौशल्या जी रात बीत रही है, तो उठने लगी। उठते उठते कौशल्या जी ने कहा कि हमरे तो अब इस गति, अब तो एक भगवान मालिक है, एक हमारे जनक जी महाराज मालिक है, ये हमारी सहायता करेंगे, और तो हमको हमारी कौन सहायता करे। सीता जी की माँ बोलने लगी, कौशल्या जी आप राम जी की माँ होना, दशरथ जी की धर्म पत्नी होना, तभी आप ऐसी बात बोलते हो। सेवक राव कर्म मन मानी सदा सहाय महेश भवानी। महाराज हमारे महाराज जनक जी तो सदाई आपके सेवक हैं। सेवक राव जनक जी तो आपके सेवक ही रहेंगे। सहायता भगवान शंकर पार्वती करेंगे। देखो ये पार्वती शंकर की बात आई ना, ये है तो वैष्णव, हमारे रामावतार में ये वैष्णव है, सूर्य वंश वैष्णव वंश है। और जनक जी महाराज है, इन्होंने महेश भवानी क्यों कहा? ये गोस्वामी जी महाराज ने अपने समय में शैवों का वैष्णवों का एक बहुत बड़ा कलह चलता था, उस कलह को मिटाने के लिए कहा। गोस्वामी जी ने जो रामचरितमानस लिखा है ये समाज को सबको जोड़ने वाला था। राम जी का विवाह नहीं लिखा, पहले भगवान शंकर का विवाह बताया, भगवान शंकर का विवाह पहले बताया, राम जी की पूजा भगवान शंकर के द्वारा पहले करवाई और बाद में राम जी के द्वारा शंकर जी की पूजा करवाई। तो कह रहे हैं कि रौरे अंग जोग जग को है दीप सहायक दिनकर सोहे। आपकी सहायता कौन कर सके महाराज? रौरे अंग आपकी सहायता कौन करे? दीपक है वो कभी सूर्य को बताएगा क्या? सूर्य को देखना हो दीपक का प्रकाश लाओ, दीपक लाओ, बैटरी लाओ, सूर्य को देखेंगे। देखो जाती जाती आपको एक बात कह जाती हूं, हमारे यहां रोज सत्संग होता है, पीढ़ियों से चलता है, तो याज्ञवल्क्य जी ने हमको पहले ही बता दिया था ऐसे ऐसे राम जी के साथ सीता का विवाह होगा और ऐसे ऐसे वन में जाना होगा और 14 वर्ष तक ही जाना होगा, ये सब हमको पहले बता दिया, हम तो सब जानते थे। यह सब जाग बलिक कही राखा, देविन होई मुधा मुनि भाखा। मुनि के द्वारा कहा हुआ कभी झूठा हो ही नहीं सकता है। तो फिर सीता जी की माँ सीता जी के साथ वहां से चली गई। अब सीता जी अपने परिवार के बीच में गई। जनक जी महाराज अभी भरत जी से उधर ही मिल रहे हैं, वो इधर तो केवल जनक जी के बिना जो ये लोग थे ना वो लोग वहां पर बैठे हुए हैं। तापस वेश जानकी देखी, तपस्वी का वेश सीता जी का देखा, सबके मन में बड़ी चिंता हुई। इधर जनक जी महाराज राम जी से मिलकर के, वशिष्ठ जी से मिलकर के और अपने शिविर में आए और वहां पर सीता जी को देखा। अब देखा उन्होंने और देख जाते ही उन्होंने सीता को अपने बाहों में ले लिया। पाहुनी पावन प्रेम प्राण की, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। लीन लाई और जनक जानकी, अपने भुजाओं में ले लिया, अपने छाती से लगाया बेटी को और पाहुनी प्रावन प्रेम प्राण की, अपने पवित्र प्रेम की और प्राणों की जो पाहुना है, पाहुनी है, अपन बोलते हैं पावना, ये पावनी, पावनी माने प्राप्त करने योग्य होती है, जो प्राप्त करने योग्य है। हमारे प्राणों को यही मिलना चाहिए और हमारे प्रेम को यही मिलना चाहिए, ऐसी जो ये पावनी है सीता जी उनको मिली, बहुत उनको आनंद का अनुभव हुआ, उनके अंदर आनंद का समुद्र उमड़ गया। और हमारे जनक जी महाराज का जो मन था वो प्रयागराज हो गया। सीता जी का स्नेह है वो अक्षय वट वृक्ष के समान, प्रयाग में एक वट वृक्ष है वो अक्षय वट वृक्ष, ध्यान से सुनना। और उसमें राम जी का जो प्रेम है वो प्रेम मानो उस वट वृक्ष के ऊपर कोई बच्चा होता हो, बच्चा कृष्ण भगवान का चित्र देखते हैं ना, बट के पत्ते के ऊपर अंगूठा चूसते हुए छोटे से भगवान, वो ला रहे हैं यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज जनक जी के लिए, कि जनक जी का हृदय तो समुद्र है और उनके ये प्रेम है वो तो समुद्र है और उनका जो मन है वो प्रयागराज है, सीता जी का स्नेह है वो बट का पत्ता है, और राम जी का जो प्रेम है वो शिशु बच्चा है, और जनक जी का जो ज्ञान है वो है मार्कंडेय ऋषि, जिन्होंने जाकर उस बच्चे को पकड़ा था। यदि वो उस बच्चे को नहीं पकड़ते तो मार्कंडेय ऋषि उस समुद्र में डूब जाते हैं। ऐसे ही जनक जी का जो ज्ञान था वो ज्ञान यदि भगवान के प्रेम का आश्रय नहीं लेता तो एकदम ही डूब जाता। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुवर स्नेह की। ऐसा जो इनका प्रेम था जनक जी महाराज का, वो प्रेम मामूली नहीं था, ये राम और सीता में प्रेम था। उस समय में सीता जी ने देखा कि मेरी माँ, मेरे पिताजी और जितने लोग हैं ये स्नेह के कारण से विकल हो रहे हैं, तो सीता जी ने बहुत धैर्य से काम लिया। सीता जी के भी आंखों से आंसू तो आने लग गए, पर बहुत जल्दी उन्होंने आंसू पूछ के बड़ा धैर्य धारण किया। जनक जी ने कहा, देख बेटा, तुमने तो हमारे कुल को पवित्र कर दिया, हमारे कुल में चांद लगा दिए, उज्ज्वल कर दिया कीर्ति को, क्योंकि स्त्री होती है वो दो कुल को पवित्र करने वाली होती है। तुमने तो आज गंगा की महिमा को कम कर दिया। गंगा अवनी थल तीन बड़े रे, गंगा जी के लिए तो तीन ही सबसे बड़े स्थान है। एक तो गंगा जी सबसे पहले आकर जमीन पर टिकी, गंगोत्री, वहां से हरिद्वार में आई, और फिर गंगा जी के साथ यमुना जी, सरस्वती मिली तो प्रयागराज में आई, और तीसरा स्थल हुआ गंगा सागर। तो देखो, हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर, तीन जगह गंगा जी के स्थान बड़े स्थान है। गंगा अवानी थल तीन ही बडेरे, यही के साधु समाज घनेरे। लेकिन तुम एक ऐसी तीर्थ हो गई कि जिसने कितने कितने साधु समाज के हृदय में जाकर तीर्थ स्थान बना लिया। पिताजी इतनी महिमा गा रहे हैं अपनी बेटी की, तो सीता जी वहां से बहुत संकोच में गिर गई, संकोच में पड़ गई, और फिर उसके बाद वहां से भी प्रस्थान करके चली आई, अपने ससुराल की तरफ आई। देखो, लड़की के लिए ये जहाँ ससुराल और पीहर दोनों पक्ष के लोग रहते हो, लड़की को चाहिए, पुत्री को चाहिए कि ससुराल पक्ष में रहे। अब चित्रकूट में दोनों ही आए, ससुराल के तो आए ही, लेकिन पीहर पक्ष के भी लोग आए, तो सकित न कहते न सी सकुची मन माई, यहाँ बसब रजनी भलनाई। सीता जी ने बड़े कायदे से माँ को इशारा किया, और सुनैना जी ने जनक जी को इशारा किया, ये वहां जाना चाहती है। लखीरुख रानी जनायऊ राउ, और हृदय सराहत शील स्वभाव। जनक जी ने कहा, कितनी अच्छी बात है, उसको तो विदा कर दिया सीता जी को। ये एक ऐसा प्रसंग है, वो आजकल के पिता माता होते तो वो ये कहते कि बेटी तुमने ये क्या किया, तुमको थोड़ी वनवास मिला था, तुम क्यों आए। या तो वो राम जी से लड़ाई झगड़ा करने लगते, वो सीता जी के ससुराल वालों से लड़ाई करते, लेकिन यहां ये आदर्श है, आदर्श। बड़ा विचित्र ये प्रसंग था, हृदय सराहत शील स्वभाव के। नहीं, सीता जी ने बहुत अच्छा किया, माता पिता ने सबकी सबने सराहना की। अब देखो, यहां सुनैना जी ने जनक जी महाराज से कहा, हे महाराज, आपको बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा, परब्रह्म परमात्मा की बातें सुनाते हैं, सगुण लीला सुनाते हैं, कह कि निर्गुण लीला सुनाते हैं, लेकिन आज हमने कौशल्या जी के मुख से भरत के विषय में सुना है। कही समय सिर भरत गति, रानी सुबानी सयानी। इतनी बढ़िया बातें हमको भरत के विषय में सुनाई है कौशल्या जी ने। तो क्या सुनाया? तो जो कुछ कौशल्या जी ने सुनाया था वो सुनैना जी ने जनक जी को सुनाया, और जनक जी महाराज आंख बंद करके अश्रुपात पूर्वक जो है उस कथा को सुने। सुनी भूपाल भरत व्यवहारु, सौन सुगंध सुधा शशि सारु, मूंदे सजल नयन पुलकेतन, सुजस सराहन लगे मुदित मन। वाह वाह भरत, वाह भरत, ऐसे उसकी जो है भरत जी की महिमा गाई। अब क्या, अब जब सुनो, सुने ना, सुने नहीं, अब तुम सुनो, मैं तुमको सुनाता हूं, मैं तुमको अब भरत जी की कथा सुनाता हूं। अरे आप तो सुन रहे थे, अरे कथा ना इसको सुनाने से और सुनने से, कथा वही सुना सकता है जो सुना हुआ होता है। मैंने कथा सुनी तो मैंने धारण कर लिया, मैं तुमको सुनाता हूं, तुम सुनो। राम कथा भी बहुत सुनी है, पर भरत कथा भवबंध विमोचनी। संसार से यदि ऊपर उठना है तो भाई उसके लिए भरत जी की कथा सुनो। धर्म के विषय में, राजनीति के विषय में, ब्रह्म के विषय में मेरी बुद्धि खूब चलती है, परंतु भरत की जहां महिमा कहने के लिए आए तो छल पूर्वक भरत की छाया तक भी मेरी बुद्धि जा नहीं सकती। कहे कहा छली छुअती न छाई, भरत की जो छा है, छाया है, उस छाया को भी छल पूर्वक मैं पकड़ लूं, पकड़ नहीं सकता। उसकी बुद्धि उसकी ऐसा ही है। अब मेरी बात छोड़ो, विधाता भी नहीं कह सकता, अहि गणपति अहिपति शिव सारद कवि कोविद बुद्ध विज्ञान विशारद भरत चरित कीरति करतूति धर्म शील गुण विमल विभूति समुजत सुनत सुखद सब काऊ। सब सुन लेंगे, समझ लेंगे, उसमें डूब जाएंगे, पर वापिस कहना पड़े तो बड़ा मुश्किल काम है। भरत जी की महिमा को कौन कह सकता है? अरे हमारी तो बात छोड़ो, जान नहीं राम, राम जी जानते हैं भरत जी को, पर सकई न बखानी, कह नहीं सकते हैं। इतना भरत का विचित्र चरित्र है। ऐसा कहते कहते भगत भरत के अंदर डूब गए जनक जी महाराज। सुनैना जी ने कहा कि इतना प्रेम है तो फिर आप भरत को राम को अलग अलग क्यों होने देते हो? आप इन दोनों को साथ में रखिए ना। सुनो सुनैने, यदि बहुरई लखन भरतु बन जाए, यदि लक्ष्मण की जगह भरत जी वन में चले जाएंगे तो सब कर भल सबके मन माही। सब ऐसा ही जानते हैं कि अब बड़ा अच्छा काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। सबके मन में यह है कि सबका भला होगा, पर ऐसा होगा नहीं। क्यों? सबसे बड़ी कठिनता क्या है कि भरत जी का और राम जी का जो परस्पर में प्रेम है, विश्वास है, इनका इनका जो सोचने समझने का विचार है, वो वास्तव में सबसे अलग ढंग का है। भरत है वो स्नेह और ममता की मूर्ति है, और राम जी की जो सीमा है वो समता की मूर्ति है। राम जी में तो समता है और भरत में स्नेह और ममता है, तो भरत ज्यादा आगे पढ़ रहा है। ममता भगवान में इतनी ज्यादा है और आगे भगवान को जो लीला करनी होगी वो बड़ी कठोर लीला करनी होगी। देखो आप विचार करो सुनैना जी, जो भरत राम जी का केवल ऐसा दिव्य चित्रकूट में निवास हो रहा है, यही सहन नहीं कर सकता है। अपने को याज्ञवल्क्य जी ने क्या बताया था, सीता जी का हरण होगा, राक्षस लोग बाण चलाएंगे, उस समय भरत जी की क्या दशा होगी? क्या भरत जी युद्ध कर सकेंगे? भरत जी कैसे युद्ध, भरत जी तो राम जी पर किसी ने बाण लगाया तो वो तो रो पड़ेंगे, मर जाएंगे। यहां तो लक्ष्मण जैसा चाहिए जो माँ बाप को भी न बख्शे, दशरथ जी को भी दो बात सुना दे, ऐसा चाहिए। इसलिए परमारथ स्वार्थ सुख सारे भरतन सपने मनहु निहारे। भरत जी को न किसी परमार्थ से मतलब है, न स्वार्थ से मतलब है, वो तो केवल भगवान के चरणों में प्रेम करने वाला है। वह किसी हालत में राम जी के पक्ष में खड़ा होकर राम जी के विरुद्ध में राम जी के विरुद्ध में लड़ने वालों पर बाण चलाएगा कि वो भगवान के प्रेम में रहेगा, उसकी हालत ही और हो जाएगी। इसलिए हमें तो यही है कि अपने को तो किसी प्रकार से राम जी को और भरत के इस प्रेम के स्वरूप में बोलना ही नहीं चाहिए। भोरे ऊ भरत न पेली हही मनसहु राम रजा, इस बात को राम जी जानते हैं। और राम जी कहेंगे भरत तुमको तो अयोध्या जाना है, तो भरत आगे कुछ नहीं बोलेगा। इसलिए तुम कहती हो कि भरत को वन में भेजे, तो भेजने का अर्थ क्या हुआ? राम जी इनको अयोध्या में भेजना चाहते हैं, उसको तो हटाओ और भरत को अयोध्या में वन में भेजो, ये कैसे हो सकता है? सुनेना जी ने कहा बात तो आपकी बहुत गहरी बात है। ऐसे इन दोनों की आपस में खूब बातचीत हुई, रात भर भरत की कथा होती रही। प्रातःकाल हुआ, सब लोग नहा धोकर के गुरुजी के पास आए और गुरु महाराज हैं वो ये राम जी के पास आए, और राम जी महाराज गुरुजी के पास आए और गुरुजी को कहने लगे कि हे गुरुदेव, अब आप देख लीजिए चित्रकूट के अंदर अयोध्या के और मथुरा, अयोध्या के और मिथिला के नगर किस प्रकार से कष्ट पा रहे हैं, शोक के अंदर डूबे हुए हैं, आपको ये आज्ञा देकर के कोई न कोई सल्टारा करो ना, उचित हो सो कीजिए ना था, जो उचित हो वो सब करो। आप जैसे गुरुजनों के रहते हुए हम कहेंगे क्या कि ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए? तो आप सोचिए, हमको आदेश दीजिए कि हमको क्या करना है। पर ये चित्रकूट कोई रहने की जगह थोड़ा ही है, ये तो आए गए मिल लिए बस इतना ही अच्छा है। गुरु महाराज ने कहा कि देखो क्या बताए राम, लोगों को बड़ा आनंद मिल रहा है क्योंकि आप है इसलिए चित्रकूट अच्छा है। तुम बिनु राम सकल सुख साजा नरक सरिस, तुम्हारे बिना संसार का सारा सुख मिल जाए वो नरक के समान है। और आपके मिल जाने से कितना ही बड़ा दुख हो वो बड़ा आनंद देने वाला होता है। देखो जिसमें आपके चरणों में प्रेम न हो वो योग योग नहीं होता, वो ज्ञान ज्ञान नहीं होता है। प्रेम की प्रधानता होती है जिसमें, वो योग वो साधन श्रेष्ठ होता है। अब आप ऐसा करो, आप अपने आश्रम में पधारो और हम लोग जो है आपस में बातचीत करेंगे। इतना कहकर के गुरु महाराज वहां राम जी को तो विदा कर दिए और जिधर जनक जी महाराज थे वहां जनक जी महाराज के पास आकर के विचार विमर्श के लिए बैठ गए कि अब अपने को क्या करना है, ये विचार विमर्श करेंगे। जय सीताराम 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 जय सीताराम जय जय सीताराम 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 जय सीताराम जय राम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम।
सीताराम 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 जय सीताराम
जय 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 सीताराम 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 जय सीताराम
सियावर रामचंद्र की
जय
मोर मुकुटवंशी वाले की
जय
अनंत श्री हरि राम दास जी महाराज की
जय
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की
जय
भक्तवत्सल भगवान की
जय
आनंद कंद भगवान की
जय